नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के भू अभिलेख निदेशालय के सहयोग से आज से मनाली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। इसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, राजस्व सचिव, भू अभिलेख निदेशक और निपटान आयुक्त सहित अधिकारी शामिल होंगे। वे भू प्रशासन संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और इस क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। ऊना जिला के लालसिंघी में एक निजी होटल में बीती रात हुई मारपीट की एक घटना में गोली चलने के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। 2 गुटों में हुई इस लड़ाई में मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी है वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। सरकार को ऐसा लगता है कि कोई सरोकार ही नहीं। रात को ऊना में जिस प्रकार से एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, बर्थडे सेलिब्रेशन में वहां पर गोलियां चली, एक आदमी की जिंदगी चले गई, 3 गंभीर रूप से घायल है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति। और ऐसी घटनाओं का क्रम जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हर जिले में घटित होता जा रहा है, आखिरकार ये कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की कब सुधरेगी?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के सहयोग से कल शिमला में एक एकता मार्च का आयोजन किया गया। सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं, एनसीसी और एनएसएस कैडेट के अलावा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी कड़ी में आज सोलन विधानसभा क्षेत्र के चंबाघाट, कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी और सनाहा में एक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक कल शाम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार को अलग अलग विषयों पर घेरने की योजना बनाई गई। बैठक की जानकारी देते हुए विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को जिस प्रकार प्रदेश सरकार टालने का प्रयास कर रही है, उससे चुनाव आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। रणधीर शर्मा ने इसे प्रदेश में संवैधानिक संकट बताया।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से सरकार टालने का प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है, एक संवैधानिक संकट सा हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है। इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब ऑफलाइन सत्यापन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए आधार ऐप लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आधार ऐप कागज रहित पहचान साझाकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जो संपूर्ण या चयनित आधार जानकारी को सत्यापित और साझा करने का विकल्प प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शहरी विकास विभाग ने जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में आवारा कुत्तों की समस्या की निगरानी के लिए कमेटियां गठित कर दी है। शहरी विकास विभाग के निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि कमेटियों के लिए जिम्मेदारियां तय की गई है, जिसमें अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों जहां बच्चों और जनता की आवाजाही अधिक हो, वहां इन कुत्तों की आवाजाही रोकने के लिए बाड़बंदी और मजबूत फेंसिंग जैसे उपाय करने के अलावा स्टरलाइजेशन और टीकाकरण के साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे आम परिसरों में कचरा प्रबंधन के इंतजाम शामिल है। इस बीच अत्यधिक ठंड और सड़क पर पानी जमने के कारण रोहतांग दर्रा आज से पर्यटकों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार ग्रामफू से रोहतांग और जिंगजिंग बार से सरचू तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। देश विदेश के पर्यटकों को रोहतांग दर्रे का दीदार करने के लिए अब अगले 6 महीने का इंतजार करना होगा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।